इनाया का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वो टकटकी लगाए कायरव को देखने लगी। माहौल एक्सप्रेशन से भारी हो गया था। कायरव के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे, साथ ही उसे इनाया के रिएक्शन का इंतजार था। लेकिन इनाया ने कुछ खास रिएक्ट ही नहीं किया, बस खामोशी से कायरव को देखती रही, जिसकी वजह से कायरव थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। तुम कुछ नहीं कहोगे क्या? तुम इस वजह से परेशान हो? हाँ, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि मुझे पहले से अंदाज़ा था कि ऐसा ही कुछ होगा। वॉट? कायरव बुरी तरह चौंका। इनाया की बात सुनकर उसे झटका लगा था। वहीं इनाया ने बिना किसी भाव के आगे कहा, हाँ, जब मैं मानव को हॉस्पिटल लेकर गई थी तभी से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें पता है जब मानव को उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उस वक्त उसकी क्या कंडीशन थी? ड्रग्स का केस था। कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि कुछ भी हो सकता था। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ऐसे क्रिटिकल केस में पेशेंट को एडमिट करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, अपना रिकॉर्ड और हॉस्पिटल का नाम खराब नहीं करना चाहते। अगर एडमिट कर भी लेते हैं तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। बिना फॉर्मेलिटीज़ और पेमेंट के ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं होता। लेकिन मानव के केस में सब अलग था। हम रात के वक्त उस हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने तुरंत मानव को एडमिट कर लिया। मुझसे कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करवाई। पेमेंट के लिए भी तब कहा जब मानव का ट्रीटमेंट हो गया। पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं किया। जब मैंने वहीं रुकने की परमिशन मांगी तो मुझे वो भी आसानी से मिल गई। डॉक्टर का बिहेवियर मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। मुझे तभी से शक था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहती थी। पर मानव इस कंडीशन में नहीं था और मैं उसे लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या चल रहा था, लेकिन वहाँ मानव का ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा था और उस वक्त यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जब मानव को डिस्चार्ज मिला और हॉस्पिटल के बाहर से हमें किडनैप किया गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला, तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि कोई है जो उन गुंडों तक हमारी खबर पहुंचा रहा था। कोई ऐसा था जो उस हॉस्पिटल से था और मिस्टर रायचंद के साथ मिला हुआ था। आज पता चल गया कि वो डॉक्टर ही उनके लिए काम कर रहा था। इनाया अब भी शांत थी। पल भर ठहरते हुए उसने आगे कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान थे? ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। आजकल के ज़माने में लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, और तुम्हारे डैड के पास तो पैसे के साथ पावर भी है, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर वो डॉक्टर नहीं तो कोई और बिक जाता और उन तक हमारी खबर पहुंचा देता। हो सकता है उस डॉक्टर ने पैसों के लालच में ऐसा किया हो, या शायद उसकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन उसने मानव का ट्रीटमेंट किया, उसकी जान बचाई, और कहीं ना कहीं उसने ये भी तुम्हारे डैड के कहने पर ही किया होगा। वरना जो कंडीशन थी वो बहुत ही आसानी से हमें ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसलिए इस चीज़ के लिए मैंने तुम्हारे डैड और उस डॉक्टर दोनों को माफ़ कर दिया। और उसके बाद जो उन्होंने तुम्हारा किडनैप करवाया, उन गुंडों के बीच छोड़ दिया, उस घटिया जगह तुम्हें बंद करके रखा, उसका क्या? जानती हो ना तुम, उनकी नज़रों में तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं थी। वो बस तुम्हारा गुरूर तोड़ना चाहते थे, अपनी जीत का जश्न मनाकर तुम्हें हारता देखना चाहते थे, इसलिए तुम्हें जिंदा रखा। अगर मैं उनकी बातों में आ जाता, तुम्हें धोखेबाज समझकर सिया से शादी कर लेता, तो उसके बाद वो तुम्हें जिंदा छोड़ने का रिस्क कभी नहीं लेते। उन्होंने तुम्हें और मानव को किडनैप ही इसीलिए करवाया था ताकि अपने प्लान के पूरे होने के बाद तुम दोनों को अपने रास्ते से हटवा सकें। और ये सब उस डॉक्टर की वजह से हुआ। अगर उसने डैड तक तुम्हारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाई होती तो वो गुंडे कभी तुम्हें उस दिन किडनैप नहीं कर पाते। नहीं, किडनैप तो वो तब भी कर लेते। उन गुंडों ने कहा था कि वो हम पर नज़र रखेंगे, और मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारे डैड ने जो भी किया उसके लिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। कायरव ज़रा उलझा। इनाया को वो सब याद आ गया जो उसने सहा, जो मानव के साथ हुआ, जितनी तकलीफ अनीता जी को सहनी पड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों में गुस्से में घुली नफरत छलकने लगी। शायद तुम्हें यह सुनकर बुरा लगे, लेकिन जो तुम्हारे डैड ने मेरे साथ किया, जो मानव और काकी को सहना पड़ा, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अपनी जिद पूरी करने के लिए जितने नीचे वो गिरे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कैरेक्टरलेस लड़की बना दिया, मानव की जान लेने की कोशिश की, मुझे उन दरिंदों के बीच फेंक दिया। वो हवस भरी नजरें, वो छुअन, वो रातें जो मैंने खौफ में काटी, मैं वो सब कभी नहीं भूल सकती। मैं नफरत करती हूँ उनसे। जो उन्होंने मेरे साथ किया कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता, और उन्होंने अपनी ही बहू के साथ किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी शादी सिया से करवाने की अपनी जिद पूरी करना चाहते थे, मुझे हारता देखना चाहते थे। उन्हें अपनी करनी पर पछतावा तक नहीं, वो मेरी माफ़ी डिजर्व ही नहीं करते। उनके साथ तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। बस इतना याद रखना कि इन सब में तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। कोई रिश्ता नहीं मेरा उनसे, लेकिन तुम मेरे सब कुछ हो। मैं तुम्हारे माथे पर एक शिकन भी नहीं देख सकती। इनाया ने अपनी हथेली से उसके चेहरे को छुआ और अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाने लगी। और अगर मैं कहूं कि मैं उनके साथ कुछ नहीं करना चाहता तो क्या तब भी तुम सब मुझ पर छोड़ दोगी? इतने बड़े गुनाह के बाद उन्हें ऐसे ही जाने दोगी? मुझसे बड़े गुनाहगार तो वो तुम्हारे हैं, सजा नहीं दिलाओगी उन्हें? कायरव सीरियस था, पता नहीं सच में ऐसा करने वाला था या बस इनाया का टेस्ट ले रहा था। लेकिन उसकी गहरी निगाहें इनाया पर ही टिकी थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी, आश्चर्य कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस शांति। अगर छोड़ सको तो छोड़ दो, कर दो उन्हें माफ़। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, तुम्हारे अगेंस्ट जाकर उन्हें सजा दिलाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। कायरव को झटका लगा और आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या सच में तुम इतनी आसानी से उन्हें माफ कर दोगी? मैं थोड़ी करूंगी, माफ तो तुम करोगी, मैं तो बस तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारा साथ दूंगी। कायरव अब भी हैरान परेशान सा इनाया को देखे जा रहा था। इनाया उसके एक्सप्रेशन देखकर धीमे से मुस्कुराई। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें कि मैं इतनी आसानी से मान गई? हैरानी हो रही है मेरा जवाब सुनकर। क्या तुम मुझसे कोई और जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे थे कि तुम्हारी डिसीजन सुनकर मैं तुम पर गुस्सा करूंगी, तुमसे लड़ाई करूंगी, कि तुम उन्हें इतनी आसानी से कैसी माफ कर सकते हो? और मेरा रिएक्शन तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था, इसीलिए तुम इतने हैरान हो रहे हो? कायरव के एक्सप्रेशन जरा बदले, जैसे इनाया ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। वहीं इनाया की मुस्कुराहट थोड़ी और गहरी हो गई। तुम टेस्ट ले रहे थे ना मेरा, बताओ इस टेस्ट में कितने नंबर मिले मुझे, पास हुई या फेल? कायरव चौका, तुम ये क्या कह रही हो? वही जो सच है, टेस्ट ही तो ले रहे थे तुम मेरा, देखना चाहते थे कि तुम्हारे उस डिसीजन के बाद मैं क्या करूंगी, या शायद ये जानना चाहते थे कि मुझे तुम पर कितना विश्वास है। कायरव गहरी निगाहों से उसे देखने लगा, जैसे उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। इनाया ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई और संजीदगी की चादर ओढ़ ली। हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं, क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं तुम्हें इतना भी नहीं जानती कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगी, मान लूंगी कि तुम मिस्टर रायचंद को माफ करने वाले हो और इस बात पर तुमसे बहस करूंगी, लड़ाई करूंगी? कायरव का चेहरा बिल्कुल सपाट था, लेकिन इनाया यही नहीं रुकी।
यू नो वॉट, मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल तुम्हारे साथ बिताए हैं, हस्बैंड हो तुम मेरे, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, पूरी तरह से ना सही लेकिन तुम्हें इतना तो जानती ही हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ये बता सकूँ, पहचान सकूँ कि कब तुम सच बोल रहे हो और कब झूठ। तुम्हें लग रहा है कि डैड को माफ़ करने वाली बात झूठ है, मैं तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए नाटक कर रहा हूँ? कायरव ने भाव उछाली, इनाया ने तुरंत सर हिलाया और जो कहा उसे सुनकर कायरव बुरी तरह चौंक गया। टू बी कंटिन्यूड।